दिन भर तारीख 26 जून दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। ट्यूनीशिया के सूस शहर के एक टूरिस्ट होटल पर हमला, 27 लोगों की मौत। फ्रांस में लियोन के पास फैक्ट्री पर हमले में एक व्यक्ति का सिर काट दिया गया। कुवैत और सोमालिया भी बने हमले का निशाना। विवेचना में सुनिए इमरजेंसी के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी के भारत से अमेरिका जाने और वापस आकर राज्यसभा के उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की कहानी।
तो मैं खड़ा हुआ, यस मिस्टर चेयरमैन ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो मैंने कहा कि इंटरिम सेशन, लोकतंत्र की हत्या हो गई तो उसका नाम तो आपने छोड़ दिया। तो
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। ट्यूनीशिया के गृह मंत्रालय का कहना है कि ट्यूनीशिया के सूस शहर के एक होटल पर हमला हुआ है जिसमें कम से कम 27 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हमलावरों में से एक बंदूकधारी को सुरक्षा बलों ने मार दिया है। सूस ट्यूनीशिया का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। मार्च में राजधानी ट्यूनिस के एक संग्रहालय पर हुए चरमपंथी हमले के बाद ट्यूनीशिया हाई अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय का कहना है कि अभी यह हमला जारी है। फ्रांस के लियों के नज़दीक एक केमिकल फैक्ट्री पर हुए संदिग्ध इस्लामी चरमपंथी हमले में एक व्यक्ति का सर काट दिया गया है, जबकि कम से कम दो लोग घायल हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि सां क्वाटा फ्लाबिये में स्थित इस फैक्ट्री में कई छोटे छोटे विस्फोट भी हुए हैं। खबरों के मुताबिक कथित हमलावर के पास एक झंडा भी था जो नज़दीक ही पाया गया। फ्रांस की पुलिस ने एक 35 वर्षीय संदिग्ध को घटनास्थल पर गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। इटली के प्रधानमंत्री ने कल यूरोपीय नेताओं के बीच आप्रवासियों पर हुई बातचीत को इस समस्या के हल की तरफ एक छोटा कदम बताया है। कल देर रात तक इन नेताओं के बीच आप्रवासियों के मुद्दे पर बात हुई और इनके पुनर्वास पर एक स्वैच्छिक स्कीम पर सहमति बनी है, लेकिन इससे ब्रिटेन जैसे कुछ देश बाहर ही रहे। ब्रसल्स में यूरोपीय सम्मेलन के दूसरे दिन की बैठक से पहले इटली के प्रधानमंत्री मात्यो रेंसी ने कहा कि इस बारे में अभी और काम करने की जरूरत है।
Noi pensiamo che ci sia molto da fare sul tema dell'immigrazione.
हमें लगता है कि आप्रवासियों के मुद्दे पर हमें अभी बहुत काम करना है। हालांकि ये एक छोटा कदम है और बहुत ठोस कदम नहीं है, लेकिन ये अंतिम नहीं है और आगे की तरफ लिया गया कदम है। छोटे कदम के तौर पर मैं इस फैसले से संतुष्ट हूँ। ये थे मात्यो रेंसी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कुवैत की एक शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और अनेक घायल हुए हैं। यह हमला कुवैत की राजधानी कुवैत शहर में स्थित इमाम अल सदेक मस्जिद पर हुआ, जहां जुमे की नमाज के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ होती है। कुवैत में इस तरह का यह पहला हमला हुआ है। इससे पहले पड़ोसी देश सऊदी अरब में ऐसे हमले हुए हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के पास लीगो में अफ्रीकी संघ के सैन्य छावनी पर बंदूकधारियों ने हमला किया है जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गए हैं। चरमपंथी गुट अलशबाब ने दावा किया है कि इस हमले के बाद उन्होंने छावनी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सोमालिया स्थित अफ्रीकी संघ मिशन का कहना है कि उनके सैनिक अब भी इस्लामिक चरमपंथियों से लड़ रहे हैं। रमजान शुरू होने के बाद से अलशबाब ने अपने हमले यहाँ तेज कर दिए हैं। चीन के स्टॉक बाजार की कीमतों में तेज गिरावट आई है। आज शेयर कीमतें 7% से भी ज़्यादा गिर गईं। इससे बाजार में ये डर पैदा हो गया है कि पिछले साल शेयर बाजार में जितनी बढ़त हासिल की थी वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। लगता है दुनिया में आज का दिन हमलों का दिन था। सबसे पहले बात 4 बड़े हमलों की, उसमें भी सबसे बड़ा हमला ट्यूनीशिया के शहर सूस के एक टूरिस्ट होटल पर हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि 27 लोगों की मौत हो गई है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है फैसल मोहम्मद अली। फैसल मोहम्मद अली, मैं आपसे जितने धमाके हुए उनके बारे में सिलसिला चाहता हूं। सबसे पहले बात मैं ट्यूनीशिया की करूँगा, कैसे हुई ये घटना?
मोहनलाल, ये एक बीच पर हुई है जहाँ 2 होटलों के बीच समुद्र का किनारा था, जहाँ और ये सूस जो है बहुत ही मशहूर पर्यटक स्थल है ट्यूनीशिया का, और वहाँ काफ़ी लोग जमा थे। उसी वक्त हमला हुआ जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। जैसा आपने कहा कि मारे जाने वालों में ज़्यादातर लोग जो हैं विदेशी हैं, और वहाँ जो है अधिकारियों ने कहा कि कम से कम एक हमलावर जो है उसकी भी मौत हो गई है और एक का पीछा किया जा रहा है। एक ब्रितानी पर्यटक थे वहाँ गेरी पाइन नाम के, उस वक्त वो होटल के बीच पर मौजूद थे जब हमला हुआ अपनी बीवी के साथ, और वहाँ जब हमला हुआ तो वो वहाँ से भागे और होटल के पीछे पहुँच गए जहाँ से उन्होंने बीबीसी से बात की। उन्होंने कहा, मैं बीच की तरफ देख रहा हूं जहां से बाहर निकलने का रास्ता साफ नजर आता है, लेकिन मुझे एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। ये उनके शब्द थे। और ट्यूनिशिया में मार्च से ही जो है हाई अलर्ट है, वहां इस्लामी चरमपंथियों ने 22 लोगों की हत्या कर दी। उसके बाद जो है वहाँ एक बोडो म्यूजियम है ट्यूनिस में, उस पर हमला हुआ था, और आंतरिक मंत्रालय के जो वहां का गृह मंत्रालय है उसके एक प्रवक्ता ने बीबीसी से बताया कि हमले अभी भी वहां हमला अभी चल रहा है,
जारी है
उस बीच पे। जी
अगर मैं दूसरे हमले की बात करूं जो कि कुवैत में हुआ, एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान निशाना बनाया गया, उसके बारे में बताइए।
जी कुवैत में जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वहाँ के एक एमपी ने बताया है एक समाचार एजेंसी को कि उस वक्त कम से कम वहाँ 2000 लोग जमा थे। जैसा कि आपको मोहनलाल पता है कि रमज़ान का वक्त है और जुमा के दिन कॉन्ग्रेशन का होता है, जबकि मुसलमान जो है मस्जिदों में जमा होते हैं नमाज के लिए, उसी वक्त ये हमला हुआ। अभी तक जो खबर है हमारे पास उसमें अलग अलग एजेंसियों की अलग अलग खबर है। 4 लोग मारे गए हैं, हालाँकि एएफपी का कहना है कि 13 लोगों की मौत हुई है, और एपी जो समाचार एजेंसी है वो कह रहे हैं कि 16 लोग मरे हैं और दर्जन लोग घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए एक संगठन लिया, उसने कहा है कि उन्होंने हमला किया है। कुवैत में इस तरह का ये पहला हमला है। शिया वहाँ बड़े संख्या में रहते हैं और जिस मस्जिद में यह हमला हुआ वो मस्जिद जो है उसमें शिया काफ़ी जाते हैं, अल सवावर इलाके में इमाम सादिक मस्जिद कहलाता है वहाँ, और ये जो शहर है उसके पूर्वी इलाका है, और वहाँ जो है उस वक्त ये धमाका हुआ। और समाचार एजेंसी अल जज़ीरा ने खबर दी है कि कुवैत के अमीर जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं धमाके की जगह पर। कुवैत में जैसा कि मैंने बताया बड़ी संख्या में रहते हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह घटना कुवैत की आंतरिक एकता पर हमले की कोशिश है।
बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मोहम्मद अली। और जैसा कि हमने बताया था कि एक हमला सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुआ, जहां मोगादिशु के पास लीगो में अफ्रीकी संघ के सैन्य छावनी पर बंदूकधारियों ने हमला किया, जिसमें कम से कम बताया जा रहा है कि 30 लोग मारे गए हैं। चरमपंथी गुट अल शबाब ने दावा किया है कि ये हमला उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। बात करेंगे फ्रांस की, जहाँ लियोन के नज़दीक एक गैस फैक्ट्री पर संदिग्ध इस्लामी चरमपंथी हमला हुआ, और बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति का कलम कर दिया गया जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ। खबरों के मुताबिक कथित हमलावर के पास एक झंडा था जो कि पास में ही पाया गया। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए सुशीला सिंह से।
फ्रांस की केमिकल फैक्ट्री में हुए हमले में एक व्यक्ति का सिर काट दिया गया है और कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इस हमले को चरमपंथी हमला बताया है। फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक 2 व्यक्तियों ने लियोन में स्थित गैस फैक्ट्री के परिसर में प्रवेश किया और फिर कई धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार घटनास्थल से एक इस्लामी झंडा भी मिला है। थियरी गिरी कोट इस फैक्ट्री के नज़दीक काम करते हैं, उन्होंने एक फ्रांसीसी टेलीविजन को बताया।
हमने 10 बजने से थोड़ी देर पहले एक जोरदार आवाज़ सुनी, लेकिन क्योंकि हम एयरपोर्ट के पास हैं इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने सोचा कि कोई विमान नीचे से जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हो गए हैं। वहां पुलिस, अग्निशमन और सड़क पर काफ़ी ट्रक खड़े हुए दिखे। पुलिस ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया था और सड़क के हर किनारे पर पुलिस अधिकारी खड़े हुए थे।
उधर इस हमले पर ब्रसल्स में जानकारी देते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का कहना था,
स्थानीय समयानुसार 10 बजे से पहले सेंट क्वेंटिन में हुए इस हमले में जिस कार का इस्तेमाल किया गया उसमें 2 लोग सवार थे और उन्होंने इस फैक्ट्री पर गैस के कनस्तरों से हमला किया। इसमें कोई शक नहीं कि यह हमला इमारत को उड़ाने के इरादे से किया गया था। ये एक चरमपंथी हमला था। एक शव भी मिला है, एक सिर काटा हुआ शव मिला है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। इस हमले में एक की मौत और 2 लोग घायल हो गए हैं।
पुलिस के अनुसार उन्होंने एक 30 साल के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस हमले के बाद राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने लोगों से कहा है कि वे डरे नहीं।
हमें केवल अपनी भावनाएं ही जाहिर करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हमें कार्रवाई करनी होगी, उसे रोकना होगा। हमें अपने मूल्यों की रक्षा करनी होगी, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि गैर जरूरी विभाजन और संदेह पैदा ना हो।
उधर घटनास्थल पर पहुंचे गृह मंत्री बेरनौ कैसनौव का कहना था कि जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है उससे पुलिस पूछताछ कर रही है और वो जाँच के दायरे में था।
इस अपराध के होने के बाद संदिग्ध आदमी को सुरक्षा गार्ड ने मार दिया। ये सुरक्षा कर्मी वहाँ पहुँचा होगा और उसने काफी हिम्मत दिखाई होगी।
कैसनौव का कहना था कि संदिग्ध की पहचान की पुष्टि की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इनका नाम यासीन साले है। उनका कहना था कि इस मामले की जांच शुरू हो गई है।
अभी इस मामले में अपराधी की पहचान की जाँच की जा रही है, लेकिन ये यासीन साले हो सकते हैं। इस आदमी पर साल 2006 में भी अतिवादी होने के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में इसकी कोई दोबारा जांच नहीं की गई। अभी तक इस व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं सामने आया है।
जहां पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, वहीं प्रधानमंत्री मैनुअल वेल्स ने संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं।
तो ये थी बात फ्रांस के लियोन के पास फैक्ट्री पर जो हमला हुआ, जिसमें कि एक व्यक्ति का सिर काट दिया गया। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर। भारत की बात करते हैं। ललित मोदी प्रकरण को लेकर आज भी दिल्ली और जयपुर में कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने कहा है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा लंदन में दिए गए दस्तावेज का कोई कानूनी अर्थ नहीं है। इस बीच कांग्रेस समर्थक मंत्री विधायक उनसे मिलते रहे। कांग्रेस भी इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। समर्थकों से घिरे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा, लोग भ्रम फैला रहे हैं। पूरे घटना क्रम पर जयपुर से नारायण बारेट।
ललित मोदी प्रकरण को लेकर दिनभर जयपुर और दिल्ली में गहमागहमी रही। जयपुर में राजे समर्थक जमा होते रहे और अपने नेता का समर्थन करते रहे। इसी भीड़ में घिरे राज्य बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा, कुछ लोग बेबुनियाद भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, पार्टी राजे के साथ है और पूरी तरह एकजुट है।
ये सब भ्रामक प्रचार है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये भ्रामक प्रचार पे नहीं जाना चाहिए। आरोप मिथ्य है। आरोप में कोई दम नहीं है, किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। इसलिए ये सब मिथ्या प्रचार हो रहा है, उसमें मीडिया को नहीं जाना चाहिए।
उधर दिल्ली में कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राजे ने ललित मोदी की पत्नी का उपचार करने वाले पुर्तगाल के अस्पताल को जयपुर में बेजा छूट दी है। उन्होंने केंद्रीय बीजेपी से राजे के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जिस डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि मैंने साइन किया कि नहीं किया। अब तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि साइन मेरे ही हैं, और उन्होंने उनमें कहा कि इस डॉक्यूमेंट की जानकारी भारत सरकार या भारत के अधिकारियों को नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ये बात मान ली है कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किए हैं विटनेस के रूप में, वो इमिग्रेंट एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन थी उसमें जो तथ्य लिखे हैं वो तथ्य भारत की जो संवैधानिक कानून और सॉवरेनिटी का जो है खुला उसमें उल्लंघन हुआ है, उसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर उन्हें लेनी चाहिए। और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है, जो देशभक्ति की बात करता है, वो ऐसे नेता के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
इस बीच ललित मोदी ने लंदन में बैठे बैठे जो कुछ कहा भारत में उस पर हलचल हो गई। श्री मोदी ने कहा कि वे एक बार यकायक लंदन की होटल में प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वड्रा से मिले थे। कांग्रेस ने इस पर सफाई दी और कहा प्रियंका गांधी कभी भी मोदी से सामाजिक तौर पर नहीं मिली है। कांग्रेस ने इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया को बचकाना बताया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राजे पर लगे आरोपों को निराधार बताया और ललित मोदी की प्रियंका गांधी से मुलाकात पर सवाल उठाया है।
बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक रेफरेंस क्या दिया, सिर्फ जान इनको ये जानती है ये कह दिया, उस पर कांग्रेसी हंगामा बढ़पा कर रहे, और कांग्रेसियों से इतने अच्छे संबंध उनके रहे उस पर कांग्रेसी कुछ बोलने को तैयार नहीं। प्रियंका जी और रॉबर्ट जी ये जवाब दें, कांग्रेस की नेता जवाब दें कि आखिर इसमें माजरा क्या है।
बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की यह जंग और तेज होती जा रही है। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्रिकेट के इतिहास में पहली बार बांग्लादेश ने पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट टीम को 2-1 से करारी मात दी। इस हैरतअंगेज हार के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर सवाल उठे, साथ ही साफ नजर आया खिलाड़ी भी एकजुट नहीं हैं। तो क्या धोनी अब टीम और खिलाड़ियों को संभालने की क्षमता खो चुके हैं? क्या है इस विषय पर आपके विचार? इस शनिवार 27 जून को शाम 7:30 बजे चर्चा में भाग लेने के लिए मुफ्त डायल करें इन टोल फ्री नंबरों पर 1811-7000 और 1811-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
40 साल पहले आज ही के दिन भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस दौरान देश के इंदिरा विरोधी सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को भारतीय पुलिस नहीं पकड़ पाई। वारंट होने के बावजूद वो अमेरिका से भारत आए, राज्यसभा के उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए और फिर वापस पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए अमेरिका चले गए। उनकी पूरी कहानी सुनिए रेहान फजल से आज की विवेचना में। खलक खुदा का, मुलुक बादशाह का, हुकुम शहर कोतवाल का, हर खास आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में।
इस 72 साल के बूढ़े यानी जयप्रकाश नारायण ने जब 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक जन रैली को संबोधित किया, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अगले 7 घंटों में न सिर्फ वो बल्कि विपक्ष के सभी चोटी के नेता गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी जाएगी। 26 जून की सुबह 4 बजे जनसंघ के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी गहरी नींद में थे।
4 बजे घंटी बजी फोन के, तो मैंने फोन उठाया तो पुलिस वाला ने कहा मुझे, स्वामी साहब आप घर में हैं? मैंने कहा हाँ घर में हूँ। अब घर में हैं तो मैं आपको मिलने के लिए आने वाला हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जो आप करना करिए। मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने मेरी पत्नी को कहा कि मैं जो सोचता था वो लगता हो रहा है कि ये पुलिस वाला मुझे संकेत दे रहा, चले जाओ चले जाओ। तो मैं निकल गया। उन दिनों में मोटरगाड़ी में रेडियो आना शुरू हो गया था। 8 बजे को नाश्ता के पर बैठते पर इंदिरा गांधी की भाषण सुनी, उसमें पहली बार मुझे पता लगा कि इमरजेंसी लगी है।
इस दौरान भूमिगत हो गए स्वामी अपनी पत्नी से फोन पर कोड लैंग्वेज में बात करते, क्योंकि उनकी पत्नी रोशना का फोन टैप किया जा रहा था।
पहले तो स्वामी ने सोचा कि मैं चाइनीज एक्सेंट में बोलूंगा और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। तो ही वुड फोन अप एंड से थिंग्स लाइक दिस इज मिस्टर मोटो मोटो स्पीकिंग, व्हिच इज नॉनसेंस ऑफ कोर्स, मोटो मोटो इज जापानीज नॉट चाइनीज। बट मालूम पड़ता था कौन आया था। फिर कॉन्वर्सेशन भी थोड़ा कुछ डिस्गाइज करते थे।
भारतीय जनसंघ के सिर्फ 2 नेताओं को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। एक थे नानाजी देशमुख और दूसरे थे सुब्रमण्यम स्वामी। दोनों चुपचाप अक्सर मिलते और सरकार के प्रतिरोध की योजना बनाते।
नानाजी के साथ ठहरते समय हम संगठन बना रहे थे, तो नानाजी को तो ड्राइवर रख नहीं सकते थे क्योंकि ड्राइवर के बारे क्या भरोसा है, तो मैं गाड़ी चलाता था। लेकिन नानाजी अचानक एक दिन मुझे किसी काम से भेजा और वो खुद पकड़े गए। उस समय माधवराव जी ने कहा आप गुजरात चले जाइए, वहाँ हमारी सरकार है, कोई पकड़ नहीं सकते, या पकड़ने के लिए कोई सेंट्रल पुलिस भी आएगी तो बता देंगे। उन्होंने कहा कि आप मणिनगर रेलवे स्टेशन में उतरना है, हमें अंडरग्राउंड का जो एक नंबर दिया उन्होंने उसमें बता दो और आपको रिसीव करने के लिए प्रचारक आएगा। तो वो प्रचारक नरेंद्र मोदी था। नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन आए और वो उन्होंने हमें सहयोग किया और हमें गाड़ी में ले गए। मकरंद देसाई के नाम पर एक मिनिस्टर बना था, कैबिनेट मिनिस्टर, जो जनता मोर्चा की सरकार थी, तो वहाँ हम ठहरे।
इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तय किया कि स्वामी का इस्तेमाल विदेश में बेहतर ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ उनके अनेक संपर्क थे। स्वामी पहले कोलंबो गए और फिर वहाँ से लंदन पहुँचे। उस समय बीके नेहरू ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त थे।
मैं तो बीके नेहरू को पारिवारिक संबंध है उनके, तो मैं जब लंदन पहुंचा तो फिर मैं ठहरा, तो मैंने बीके नेहरू को फ़ोन किया। मैंने कहा तुम तो ऐसे ही हो जैसे पहले थे, क्या हिम्मत है तुम्हें, हम दोनों को मिलना चाहिए। मैंने कहा मैं आपसे मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा, कहा एम्बेसी में आ जाइए, यहाँ मेरे साथ लंच करिए। मैंने कहा तो आप तो गिरफ्तार कर लोगे मुझे, वो तो इंडियन टेरिटरी है एम्बेसी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको मैं छूँगा नहीं। मैं गया, उनसे बात की, वो मुझे कह रहा था ये सब, वो दुखी थे, वो कह रहे थे ये हमारी नेहरू की ट्रेडिशन के खिलाफ है। दो दिन में टेलीफोन आई भाई कमीशन से कि डॉक्टर स्वामी का पासपोर्ट कैंसिल हो गया और पासपोर्ट पहुंचा दीजिए। मैं कहा मैं नहीं कोई पासपोर्ट पहुंचाऊंगा। फिर लंदन टाइम्स, गार्डियन, बीबीसी, आपके बीबीसी ने तो कमाल कर दिया था, दोनों हिंदी और अंग्रेजी, जो जानकारी मैं पब्लिक को नहीं पहुंचा सकता था मैंने बीबीसी में बोलने से सबको पता लग गया। तो जो प्रचार चल रही थी, कोई बड़े नहीं लोग नहीं है, कोई मासूम लोग जेल में नहीं है, सबको ठुकराया। मैंने कहा नहीं, 1,40,000 लोग हैं। मैंने कहा जेपी को उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालकर उसकी किडनी को खत्म कर दी।
ब्रिटेन से स्वामी अमेरिका गए, जहां उन्होंने 24 राज्यों में इमरजेंसी और भारत में चल रहे दमन के खिलाफ जमकर प्रचार किया। स्वामी के मन में आया कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे पूरे भारत में तहलका मच जाए। संसद का कानून है कि अगर कोई सांसद बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता अपने आप निरस्त हो जाती है। उन्होंने तय किया कि वो भारत लौटेंगे और राज्यसभा के उपस्थिति रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे।
मुझे ये जचा कि मैं बैंकॉक के लिए टिकट खरीदूं, जो दिल्ली के लिए जो टिकट खरीदे उन्हीं का नाम होगा मैनिफेस्ट में, जो बैंकॉक में है वो ट्रांजिट पैसेंजर है उसका नाम नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बैंकॉक के लिए टिकट खरीदा। तो मैं जब उतरा दिल्ली तब मेरे पास कोई लगेज नहीं थी, मेरे पास सिर्फ राज्यसभा का जो लाल पास होता है आईडी, वो था मेरे पॉकेट में। 3 बजे सुबह, आधा लोग तो सोए हुए हैं ऐसे, तो एक ही पुलिस सब इंस्पेक्टर था, इमिग्रेशन में बैठा था, तो मैंने ये पास निकाल के उसको दिखाया, उसने मुझे सलूट किया। जब बाहर निकला तो मैं टैक्सी में बैठकर, एक होटल है राजदूत, उसमें जाकर मैंने अपना एंट्री किया। मैंने पत्नी को अंडरग्राउंड से भेजा था मैसेज कि आपको मैं फ़ोन करूंगा, लेकिन मैं अंग्रेज़ की एक्सेंट में बोलूंगा और कहूंगा कि मैं आया हूं लंदन से और आपके मौसी ने आपको प्रेजेंट भेजा, उस प्रेजेंट के लिए आप अपना बैग लेकर आइए, थोड़ी भारी चीज़ है। तो वो मैसेज ये था उसमें असली, कि मेरा जो बनाई हुई पगड़ी है और बनावटी दाढ़ी है और वेस्टर्न क्लोथ्स बुशर्ट पैंट, वो आप लेकर होटल आइए। तो मैंने कहा आज शाम को 5 बजे मैं घर आऊँगा और दरवाज़ा खटखटाऊँगा, तो आप जब दरवाज़ा खोलेंगे मैं पूछूंगा कि आपका टेलीविज़न ख़राब है क्या, और आपका ये हाँ हाँ आइए अंदर। तो मैं आया 7:15 बजे, दरवाज़ा खुलवाया तो मैंने कहा टेलीविज़न ख़राब है, उन्होंने कहा हाँ अंदर आइए, तो अंदर गया। 5 दिन मैंने अपने घर में बीता।
10 अगस्त 1976 को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अपनी पत्नी के साथ फिएट कार में संसद भवन के लिए निकले।
Well, he dropped me at the Church of the Redemption and my instructions were that you walk up and down here.
उन्होंने मुझे चर्च के पास उतारा, मुझे निर्देश थे कि मैं वहाँ चहलकदमी करती रहूं। अगर संसद भवन से मेरा पीछा किया जाता है तो मैं कार को इस जगह पर लाऊंगा। हमने वो जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि स्वामी के एक साथी वीरेंद्र सकलेजा का वहाँ पर घर हुआ करता था। हमने सोचा कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम सकलेजा के घर में घुस जाएंगे।
उधर स्वामी कार से उतर कर तेजी से राज्यसभा की तरफ बढ़े।
उन दिनों में पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ज्यादा नहीं होती थी, तो सीधा गेट तक आपकी गाड़ियां जाती थी। तो मैंने कहा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को फेस करने वाली गेट है, वहां तक मैं जाकर पार्क करूंगा, अंदर जाऊंगा, 1 मिनट का भाषण करके मैं आ जाऊंगा, और यदि मैं सफल होऊंगा तो मैं गाड़ी को ले जाऊंगा बिरला मंदिर, वहां मैं मैट के नीचे चाबी रख दूंगा और कपड़े को बदल दूंगा और टैक्सी से मैं रेलवे स्टेशन चले जाऊंगा।
इस बीच रोशना स्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के संवाददाता को पहले ही बता दिया था कि आज संसद में कुछ हंगामा हो सकता है।
अंदर गया तो रजिस्टर थी, उसमें मैंने दस्तखत किया तो घोड़े मुरारी आए, और रास्ते में मैंने इंद्रजीत गुप्ता को देखा। मैंने इंद्रजीत गुप्ता ने कहा कि क्या हो गया, तो मैंने कहा कि संजय गांधी तो अच्छी बातें बोल रहा है आजकल, और फिर मैं अंदर गया। और टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि उस समय पहला दिन था तो शोक प्रस्ताव चल रहा था, तो उसमें 7 नाम थे और ये आखिरी नाम पड़ रहा था जट्टी। तो मैं खड़ा हुआ, यस मिस्टर चेयरमैन ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, और ये सब मुझे देख रहे हैं जैसे कोई भूत आ गया। तो मैंने कहा कि इंटरिम सेशन, लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो उसका नाम तो आपने छोड़ दिया, तो मेरा सजेशन है कि इसको भी जोड़ा जाए। मैंने कहा ये कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता नहीं है, और कहा कि सब अब दो मिनट के लिए खड़े हो जाए। तो मैंने कहा मैन आई एम वॉकिंग आउट, तो मैं गाड़ी में बैठ के गया बिरला मंदिर पार्किंग लॉट।
फिर स्वामी कपड़े बदलकर गांधी टोपी लगाए दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से उन्होंने आगरा जाने वाली ट्रेन पकड़ी। इस बीच रोशना को खबर मिली कि उनके घर में पुलिस घुस गई है।
आई वेंट टू माई सिस्टर्स हाउस फ्रॉम बिरला मंदिर। आई टोल्ड कुमी एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड सो फार।
मैं बिरला मंदिर से अपने बहन के घर गई। मैंने उसे अब तक की सारी कहानी बताई। मैं वहीं थी कि फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर मेरी भाभी थी। उन्होंने बताया कि मेरे घर में पुलिस घुस गई है और उन्होंने मेरी आया को रसोई घर में बंद कर दिया है। दरअसल वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उन्हें उसे किचन में बंद करना पड़ा। मैं फौरन अपने घर की तरफ भागी।
रोशना की परेशानियों का यही अंत नहीं हुआ। उनके घर का हर सामान जब्त कर लिया गया और कोशिश हुई कि उनके घर पर भी ताला लगा दिया जाए।
The second day, they came to say that we are coming tomorrow to attach all Dr. Swami's property and the house.
दूसरे दिन वो ये कहने आए कि अगले दिन वो डॉक्टर स्वामी के सभी सामान को जब्त करने आ रहे हैं और वो उनके घर पर भी ताला लगा देंगे। मैंने कहा आप घर पर ताला नहीं लगा सकते क्योंकि ये मेरे नाम पर है। अगले दिन वो आए। मुझे कारों की खास चिंता नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि उन्हें तो वो ले ही जाएंगे। मुझे फ्रिज की भी चिंता नहीं थी लेकिन मेरी आया को थी। उसने कहा कि घर में कैसे रहेंगे फ्रिज बिना। फिर मैंने उनसे एक समझौता किया कि मैं आपको एयर कंडीशनर दे दूंगी, उसके बदले में आप फ्रिज यहीं छोड़ जाएं, और वो इसके लिए राजी हो गए।
इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी नेपाल में अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर एक बार फिर देश से निकल कर अमरीका जाने में सफल हो गए।
माधव मूले मुझे मिलते रहे। वो कहने लगे कि इंदिरा गांधी बहुत बिगड़ी हुई है आपसे, संजय गांधी बिगड़ा हुआ है। संजय गांधी ओपनली कहता है स्वामी को गोली मारो, पकड़ेंगे उसको, गिरफ्तार नहीं करना, ये तुम छोड़कर चले जाओ। नेपाल का राजा मेरा स्टूडेंट है और उसका एक एयरलाइन है, तो कार्गो में मुझे अंदर डाल के एक डब्बा भेजें और उस डब्बा को लेकर चलें, इस तरीके से हम निकल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं कर सकता क्योंकि इंदिरा गांधी को पता लग जाएगा तो कुछ ना कुछ हानि पहुंचाएगी। मैं इतना कहता हूं कि वो उनको कह दिए किसी तरीके से नेपाल के टेरिटरी में आ जाएं और फिर मैं अपनी प्लेन से उनको अमेरिका भेजूंगा। एक ही रास्ता मुझे सबसे अच्छा लगा, वो है गोरखपुर का भैरवा। 9:05 पहले मैं पहुँचना चाहिए, ये लोग आधा सोए हुए लोग होंगे, गेट बंद करने के लिए कागज़ वागज़ फाइनल कर रहे होंगे। उस समय मैं जाऊं तो नेपाली ड्रेस पहन के मैं गया और एक स्वयंसेवक मुझे छोड़ने के लिए आया वहां तक। फिर मैंने पार किया, पार करते नेपाल के राजा के लोग थे वहां, तो मुझे ले गए तुरंत वहां एक भैरवा एयर स्ट्रिप है, वहां से प्लेन काठमांडू। काठमांडू में रात को मैं राजा के साथ रुका और फिर अगला दिन मैंने कहा कि तुम अमेरिका उतना दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बैंकॉक तक पहुंचा दो और वहां से मैं कोई फ्लाइट लेकर अमेरिका जाऊंगा। तो बैंकॉक पहुंचाया उन्होंने और बैंकॉक से मैं अमेरिका गया।
2 महीने बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा कर दी। स्वामी फिर वापस आए, इस बार वो मुंबई हवाई अड्डे पर उतरे। आपातकाल लगे होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। वो राजधानी एक्सप्रेस से जब दिल्ली पहुंचे तो हजारों लोग उनके स्वागत में स्टेशन पर खड़े हुए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ा और दत्ता सामंत को हराकर दोबारा संसद में पहुंचे। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आपातकाल के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी के देश छोड़ने और उनके वापस आने की कहानी। और अब कार्यक्रम में मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। ट्यूनीशिया के गृह मंत्रालय का कहना है कि ट्यूनीशिया के सूस शहर के एक होटल पर हमला हुआ है जिसमें कम से कम 27 लोग मारे गए हैं। फ्रांस के लियों के नज़दीक एक केमिकल फैक्ट्री पर हुए संदिग्ध इस्लामी चरमपंथी हमले में एक व्यक्ति का सिर काट दिया गया है जबकि कम से कम 2 लोग घायल हुए हैं। कुवैत की एक शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और अनेक घायल हुए हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के पास लीगो में अफ्रीकी संघ के सैन्य छावनी पर बंदूकधारियों ने हमला किया जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गए हैं। चीन में स्टॉक बाजार की कीमतों में तेज गिरावट आई है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगले कार्यक्रम घटना चक्र में फिर आपसे मुलाकात होगी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।